सूरत क़यामत का ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वक्त कम है। हम सब अपनी ज़िंदगी को अगर देखें तो हम सब इसी चीज़ के साथ हैं कि हम फ़ायदा उठाएं ना उठाएं, लेकिन वक्त गुजरता जाएगा ना। और हकीकत है कि वक्त गुजर रहा है, इतनी तेज़ी से हमारा वक्त गुजर रहा है कि हम उसके बारे में सोच भी नहीं सकते। ये एक ऐसी चीज़ है कि जिसको अगर हमने अपनी ज़िंदगी में महसूस कर लिया तो हम वक्त से बहुत कुछ लेंगे। हमने अपनी ज़िंदगियों का बहुत बड़ा वक्त ज़ाया कर दिया। ज़ाया का लफ्ज़ जो मैंने बोला, ये मैंने शऊर के साथ बोला। कुछ लोग सोचते हैं कि हम ज़िंदगी बसर कर रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि वो ज़िंदगी बस गुजार रहे होते हैं। उनकी ज़िंदगी बस ऐसी होती है कि वो अपने आप को, जिसको कहते हैं ना, खींच रहे हैं, चक्कर लगा लें, चलें, दुनिया में आए हैं तो कुछ तो करना ही है ना। तो अल्लाह ताला से ये दुआ करेंगे कि वो हमारे लिए हमारे वक्त में बरकत दे और हम इसको बेहतरीन तरीके पर लें। बाज़ असलाफ़ ये दुआ किया करते थे कि अल्लाहुम्मा बारिक लना फ़ी औक़ातिना, ए अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे। तो आप लोग भी ये दुआ मांगना शुरू कर दें कि अल्लाह हमारे वक्त में बरकत दे, क्योंकि वक्त की बरकत के बग़ैर ज़िंदगी ज़ाया हो जाती है। तो ये बताइए कि सूरत क़यामा हमने सुनी, उसके बाद आपने उस पर गौर किया, कोई बात सूरत क़यामत के अंदर से जो आपको मिली वो क्या थी? किसी को मौका मिल सका कुछ भी करने का, कुछ सोचने का, तो शेयर करें जी आप।
अल्हम्दुलिल्लाह, सूरह क़यामा बहुत ही ज्यादा दिल पे असर करने वाली सूरह है और इसमें मौत का मंजर जो है वो आपको बहुत ज्यादा सोचने में मजबूर करता है। लेकिन इस दफा जो चीज मैंने महसूस की वो इस सबसे थोड़ा मुख्तलिफ थी, वो ये कि जब अल्लाह ताला ने कहा कि नबी तुम क्यों फिक्र कर रहे हो, मैं तुम्हें कुरान जो है वो याद भी करा दूंगा और फिर इसको समझाना भी हमारी जिम्मे है, तो इससे मुझे जरा क्लैरिटी हुई कि जिस तरह से अल्लाह ताला ने समझाने की जिम्मेदारी ली है और फिर वो समझाना हम तक पहुंचाए तो उससे और रीअश्योरेंस मिली मुझे। लोग हदीस के अंदर बिलीव नहीं करते, ये एक अहम पॉइंट है कि अल्लाह ताला ने ही जिस तरह समझाया है उसी तरह से हमने लिया है हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, और ऐसे ही हमने उसके ऊपर अमल किया।
जी बिल्कुल, बहुत ही बड़ी बात है। यानी मैं इसको दोबारा सुन रही थी और मैं ये सोच रही थी कि पहले हम कुरान सीख रहे होते हैं तो हमें लगता है हम अखज़ कोई नहीं कर रहे, कुछ समझ नहीं आ रहा, कुछ पल्ले नहीं पड़ रहा, बस बात ही बात चलती जा रही है। जैसे आप में से बहुत सारों को अभी इस कोर्स के दौरान भी लग रहा होगा ना कि हम पता नहीं क्या कर रहे हैं, अभी एक बात पूरी नहीं होती तो दूसरी आ जाती है। और लेकिन फिर आप कहेंगे देखिए आगे से हमने बहुत अच्छी तरह करना है। कल एक एक्सपीरियंस मैंने किया, ओक्लाहोमा में एक स्टूडेंट हैं, तो और भी स्टूडेंट्स हैं माशाल्लाह, लेकिन जिस चीज़ पर वो प्रोग्राम था वो ये था कि एक सिस्टर हैं, उन्होंने वेबसाइट के थ्रू ओनली 7 मंथ्स में सुबीलुल जन्ना कोर्स पूरा किया, पूरा A to Z सूरत फातिहा से लेके नास तक उन्होंने किया। और वो जो बाकी सिस्टर्स हैं जो वहाँ की कोऑर्डिनेटर, उन्होंने ये सोच के मुझे इनवाइट किया कि आज हमने अपनी सिस्टर की खुशी में पार्टी रखी है कि आपने ये कुरान पूरा किया है ना, तो हम उसको सेलिब्रेट करते हैं, थोड़ी देर आप भी बात करें। तो खैर जब उन्होंने मुझे साथ लिया तो बड़ी खुशी थी, वो भी थी, तो मैंने कहा कि जिन्होंने पूरा किया उनसे बात कराएं ना। तो वो जो उनकी आवाज़ थी और जो उनके जज्बात थे, और जी आप तो दिन रात मेरे साथ होती हैं, मैंने कहा मेरी नहीं कुरान की बात करें। खैर उनको मैंने बात कर करा के मैंने कहा कि मुझे बहुत ही खुशी है कि आपने ये किया, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं कि कुरान एक दफ़ा पढ़ने में नहीं समझ आता। तो अब इसका तरीका यह है कि आप किसी भी ऑनलाइन कोर्स के थ्रू या तो नूरुल्ला नूर में आ जाएं, उसमें तो दोहराई ऑफकोर्स होगी, या सुबीलुल जन्ना। कहती फिक्र नहीं करें साजा, मैंने दोबारा शुरू कर दिया, मैं 7वें पारे पे हूँ, मैंने लिखना शुरू कर दिया। वो नूरुल्ला नूर जिसमें राइटिंग होती है, ज़ाहिर जो इंचार्ज थी उन्होंने बताया हुआ था उनको, तो कहती मैंने अब अपने ओन पे 7 सपारे मैंने अपने हाथ से तर्जमे से लिख लिए ना। तो मैंने सोचा कि कौन कहता है कि किसी को कहें तो कोई करता है, ये आप खुद कहेंगे तो आप कोई काम करेंगे। तो ये दुआ करें कि अल्लाह हमें अपने इस वक्त की बेहतरीन कदर की तौफीक दे और ऐसा ना हो कि हम अपनी ज़िंदगी को ज़ाया कर दें। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं कि जो अल्लाह ताला ने हमें दी है नेमतों की सूरत में, लेकिन हम उसका कमा हक्का हो जो हक है वो नहीं देते। ज़िंदगी तो गुजर ही जाएगी, यकीन करें ये तो कभी नहीं रुकेगी, लेकिन मैं रुकती हूँ कि नहीं। तो इस सूरत में जो और बहुत कुछ था उसमें एक चीज़ क्या थी कि जिसके ऊपर इंसान को यह एहसास दिलाया गया था कि तुम अपनी ज़िंदगी की फिक्र करो और डोंट डिले योर सलाह। सूरत क़यामत का ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि वक्त कम है, और वो क़यामत जो हम सब के सर पे खड़ी है, अगर आज हमें इस दुनिया में रहते हुए उसका एहसास हो जाए ना, तो हम कभी भी अपना वक्त ज़ाया ना करें, पेंडिंग में ही पड़े रहते हैं और अपनी चीज़ों को खुद बहुत इस तरह से छानते पटकते रहते हैं कैसे लगता है कि हम मसरूफ़ हैं। फिर आप देखिए कि इसमें जो जानकनी की बात थी, इस पर आपने गौर किया, जब पिंडली से पिंडली जुदा होती है और ऐसे लगता है कि जिस्म का एक एक जोड़ खुल रहा है, बल्कि अगर आप कुरान पाक की कुछ आयात को सामने रखें, और उसमें मुझे याद आ रहा है इंसान में हमने बात भी की थी कि जब इंसान को मौत आती है तो क्या होता है, तो उसका ये सारा गोश्त जो है ना, ये हड्डियों से अलग हो जाता है। ये जो हमारे मसल्स है ना, जिसको पट्टे बोलते हैं, आसाब, ये गोश्त को हड्डियों के ऊपर ऐसे बांधे हुए, ये धागे हैं, रोप्स हैं। आसाबा कहते भी रस्सी को ही है, तासुब भी लफ्ज़ इसी से ही है ना, असीब का लफ्ज़ भी आपने कुरान पाक में पढ़ा। जब मौत आती है हमारा सारा जिस्म खुल जाता है, आंखें बंद, दिमाग बंद, सब कुछ खत्म 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 खत्म, दैट्स इट। तो अगर आज हमने अपनी इस दुनिया में अपने वक्त से फायदा नहीं उठाया, तो कल कौन है जो हमें फायदा देगा? फिर इसमें एक और चीज जिस पे आपको गौर करना था, वो है कुरान की हिफाजत। अल्लाह ताला ने ये बात इतनी सच्ची बयान की है कि इन्ना अलैना जमहू व बयाना, जब तक अल्लाह ना चाहे ना ही आपके सीने में ठहरता है और ना आपकी जुबान पे आके बयान होता है। ये भी एक मौजज़ा ही है। आप अभी कोशिश करते हैं, तर्जमा भी याद करते हैं, फिर अल्हम्दुलिल्लाह आपको याद भी हो जाता है, लेकिन क्या ऐसा नहीं लगता कि अगला पढ़ते जाते हैं पिछला भूलता जाता है? खासतौर पर शुरू के 3-4 पारों में ये बहुत होता है कि जब टेस्ट दिया था तब तो आता था, लेकिन अगर बिल्कुल 6ठे पारे का टेस्ट है तो आप 2रे पारे का तर्जमा खोलें तो बाद से वह भूल जाता है, ऐसे ही लगता है ना। ये अल्लाह ने बताया, आप जितनी भी कोशिश करते हैं ना, उन कोशिशों के बदले में अल्लाह आपसे खुश होके ना आपको खुद ही याद दिला देता। मेरी बात कितनों को समझ आ गई है? ये नहीं कि कोशिश नहीं करनी, लेकिन मेरी और आपकी कोशिश से ये कुरान सीने में नहीं ठहरेगा। हमारी उन कोशिशों को और देखकर, हमारी उस बेबसी को महसूस करके अल्लाह सुबहाना ताला हमें तोहफे के तौर पर ये कुरान याद करा देता है। कभी किसी इतने छोटे से सीने में ये कुरान जमा हो सकता है? कभी आपने सोचा? 6 साल का बच्चा हाफिज, 7 साल का बच्चा हाफिज, उसका कद काठ देखें और कुरान की वो बड़ी बड़ी आयतें देखें, आयते दैन उसमें है, आयते शहादतैन उसमें है, उसमें आयतुल कुर्सी है, ये कैसे होता है? अल्लाह के जिम्मे है। याद रखिए, ये मेरा और आपका काम ही नहीं है। सिर्फ मेरा और आपका काम क्या है? तड़पना, अल्लाह मुझसे कुछ ले ले, कोई खिदमत मेरे से इस किताब की कबूल कर ले। आजकल अपनी दुआ में ये दुआ रखें, क्योंकि इमोशनल डेज चल रहे हैं ना, और इंसान जब इमोशनल होता है तो दिल से बात निकलती है। कुरान के कोर्स में मैंने जो फील किया एज अ स्टूडेंट, शुरू में स्टूडेंट्स बहुत इमोशनल होते हैं, घबराहट बहुत होती है, समझ नहीं आ रहा क्या हो रहा है क्या होगा, लेकिन शौक बहुत ज्यादा होता है। फिर थोड़ा सा पांव जमते हैं 5-6 बारों के बाद, तो फिर उसमें घबराहट खत्म हो जाती है, लेकिन फिर उसके बाद फियरलेसनेस आती है। कई टेस्ट आपने बगैर पढ़े दिए होंगे, पहले टेस्ट सोच भी नहीं सकते थे कि आप बगैर पढ़े दें, लेकिन फिर आपने दिए। तो जब ये चीजें अल्लाह ने आपसे कराई ना, तब अगले मरहले भी इसके अल्लाह ही आपके ऊपर आसान करेगा। जब तक आप तड़पते रहेंगे करेंगे, फिर उसके बाद ये आखिरी धाका शुरू हो जाता है ना 20 पारों के बाद का, तो वही जैसे शादी से पहले लड़कियां इनसिक्योर फील करती हैं ना, पहले कहती हैं करो मेरी शादी, फिर जब होने वाली होती है और तैयारियां सारी पूरी हो जाती हैं तो फिर गम शुरू हो जाती हैं, भाग भाग के तैयारियां सारी कर लेती हैं, झटका लग जाता है ना, अब ये मैंने चीज छोड़नी है। इसी तरह हमारे साथ होता है, सफर पे जाना है जाना है, प्लानिंग खो एक जोश जोश, जब आखिरी दिन होते हैं तो ना चाहते हुए भी मौत याद आ रही होती है, ऐसे ही होता है ना। कुरान का ये वक्त जिस वक्त आप गुजारे, इस वक्त आपके ऊपर जज्बात गालिब है, रोना भी आएगा, बहुत सारी चीजें होंगी, इन वक्तों में अपने लिए दुआ कर ले कि अल्लाह इसको मेरे दिल पे डाल दे और इसको मेरी जुबान पे जारी फरमा दे। यकीन करें कि अल्लाह से मांगकर बंदा कभी भी मायूस नहीं होता। जब आप अल्लाह से दिल से मांगेंगे ना, तो अल्लाह ताला आपको जरूर देगा। जितना तड़प के मांगेंगे उतना अल्लाह ताला आपको देगा। शर्त एक है कि आपने इसकी कोशिश करनी है। नबी सल्लम को आदत नहीं थी वही की, कोई प्लानिंग नहीं थी, कभी सोचा नहीं था। अल्लाह खुद कुरान में कहते हैं कि आप तो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि आपके ऊपर ये किताब नाजिल होगी, लेकिन जब अल्लाह ने इतना बड़ा एक आपके ऊपर इनाम कर दिया, तो फिर उसको जब लेता है इंसान तो थोड़ा सा खौफ महसूस करता है। तो इसमें मेरे और आपके लिए भी एक सबक है, घबराएं नहीं। कोई भी मुश्किल बड़ी से बड़ी हो आपकी जिंदगी में, आगे भी आएंगी बहुत सारी, घबराना नहीं है। बस ये कह दें कि अल्लाह तेरे ऊपर जमा करना और तेरे ऊपर इसका बयान करना। शर्त एक है कि आप कोशिश करते जाएं, बस अल्लाह ताला आपके लिए इसमें आसानियां करेगा। फिर उसके बाद आप देखिए कि अगर सूरत के आखिरी हिस्से पे थोड़ा सा गौर कर लीजिए, तो इसमें भी आपको अपने लिए बहुत सारी चीजें मिल जाएंगी। और वो क्या है कि अल्लाह ने तो ये खूबसूरत किताब पेश कर दी सबके लिए बराबर की, एक ही जैसी, किसी में कोई कमी बेशी नहीं, एक को कोई ज्यादा क्लियर मिल गई तो किसी को दूसरी। अब इसके बाद हर बंदे का अपना नसीब है, दुनिया में इस किताब से ताल्लुक जुड़ेगा, चेहरे पे ताजगी आएगी, कल अल्लाह के दीदार से चेहरा चमकेगा, यानी अल्लाह कयामत के दिन अपना दीदार नसीब करेगा, और उस वक्त जो चेहरे चमक रहे होंगे, दमक रहे होंगे, उस वक्त याद रहेंगे दुनिया के गम मसले परेशानियां, ये तो दुनिया भी भूल जाते हैं। तो दुआ क्या करेंगे, अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका लज्जत नजरी इला वजहिका, ए अल्लाह मैं सवाल करती हूँ तुझसे तेरे चेहरे को देखने की लज्जत का, लज्जत नजर इला वजही का, यानी जब मैं तेरे चेहरे को देखूं तो जो लज्जत मिले मैं तुझसे वो मांगती हूँ, और उसके साथ ही फिर लज्जत नजर इला वजही का व शौक इला लिखाई का, और शौक तेरी मुलाकात का, तेरी मुलाकात का शौक लग जाए मुझको, और इस शौक के बगैर क्यामत के दिन अगर अल्लाह का दीदार हो भी गया तो ये कौन सी बड़ी बात है, ये तो कोई बड़ी बात नहीं। इला रब्बिहा नाज़िरा, इतनी बड़ी नेमत है जन्नत में, इसके आगे जन्नत की सारी नेमतें हिच हैं, लेकिन सब लोगों को ये तड़प नहीं लगती, कुछ लोग दुनिया में मर खप जाते हैं, इस दुनिया के पीछे हलकान हो जाते हैं, तो कहा वजूह यौम इज़िन बासिरा, फांसी चेहरे, थके हुए, मांदे हुए, परेशान, हर वक्त एक ही फिकर फिकर फिकर, डिप्रेशन, उदासी, गम है, समझ नहीं आता क्या है, एक खत्म होती है मजबूरी, दूसरी शुरू, दूसरी तो तीसरी। इसी तरह इसके ऊपर मुफस्सरीन ने ये बात भी कही है कि जब इंसान अल्लाह को देखेगा तो उसका चेहरा खिलेगा। ये कैसे हो सकता है, क्या वाकई एक इंसान अल्लाह के चेहरे को ऐसे देखेगा जिसको अपनी जुबान में आप कहते हैं टुकर टुकर देखना, हाँ समझ रहे हैं, फेस टू फेस, आंखों में आंखें डालना। तो मुफस्सरीन कहते हैं कि नहीं, ये असल में मजाजी माने हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे किसी का इंतजार हो तो हम कहते हैं मेरी तो नजरें उसकी तरफ लगी हुई हैं। एक अंधा भी बाज़ दफा कहता है जी आपकी तरफ मेरी नजरें लगी हुई थी, लेकिन उस वक्त देख नहीं रहा होता, लेकिन उसके जहन में ये सवाल होते हैं इस तरह के ना, मैं उसको देख रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन क्या हकीकत में अल्लाह का दीदार होगा। आपको एक दो रिवायतें सुनाती हैं तो आपको उसकी कैफियत थोड़ी सी समझ आएगी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की रिवायत है ये, इन्नकुम सतरौना रब्बकुम एयानन, बेशक तुम अपने रब को एलानिया देखोगे, और मुस्लिम और तिर्मिजी की रिवायत में अल्लाह के नबी ने फरमाया, अब आप जरा इसको इमेजिन कीजिए, फरमाया जब जन्नती लोग जन्नत में दाखिल हो जाएंगे तो अल्लाह ताला इनसे दरियाफ्त फरमाएगा, क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें कुछ मजीद दूं, यानी तुम्हें मजीद कुछ दूं, क्या ये तुम्हारी ख्वाहिश है। तो वो अर्ज करेंगे, क्या आपने हमारे चेहरों को रोशन नहीं कर दिया, क्या आपने हमें जन्नत में दाखिल नहीं कर दिया और जहन्नुम से बचा नहीं लिया। कहने का मतलब ये कि सब कुछ तो मिल गया, अब और भी कोई नेमत है कि जो आप हमें देना चाहते हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है कि जैसे मेज़बान के पूछने पे मेहमान और ही ज्यादा शर्मिंदा होता है कि अब और क्या आप हमारी खातर करेंगे, इतनी तो आपने हमारी कर ली, इतने पे अल्लाह ताला पर्दा हटा देंगे, और इन लोगों को जो कुछ इनामात मिलेंगे थे इनमें से कोई इनाम भी उन्हें इससे ज्यादा महबूब ना होगा कि वो अपने रब की दीद से मुशर्रफ हों, यानी फिर उनको लगेगा कि ये नेमत तो इससे भी बड़ी थी जो अभी तक मिली है, और यही वो मजीद इनाम है जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान पाक में फरमाया, लिल्लज़ीन अहसनुल हुस्ना व ज़ियादा, कहाँ है पता आपको, सूरत यूनुस की आयत नंबर 26, कि जिन लोगों ने नेक अमल किए उनके लिए अच्छा अजर यानी हुस्ना है और ज़ियादा भी है। तो साहबा ने पूछा था अल्लाह के नबी ये ज्यादा क्या है, तो फरमाया अल्लाह के चेहरे का दीदार। देखिए आज मैं और आप इसका अंदाजा नहीं लगा सकते कितनी बड़ी चीज है अल्लाह का दीदार। आप सूरज चांद सितारे फल फूल को देखते हैं फिर पूछें इसको बनाने वाला कौन है, अपने दिल में ये भी तड़प पैदा करें कि अल्लाह मुझे अपने दीदार से महरूम ना करना। और आपको पता है कि बहुत सारे लोग जन्नत में जाएंगे लेकिन हर एक को अल्लाह का दीदार नहीं होगा। क्यों कहा कि जब अल्लाह से मांगो तो जन्नतुल फिरदौस मांगो, क्यों उसकी छत रहमान का अर्श, क्यों हजरत आसिया ने दुआ की थी कि रब्बिब नीली इन तक बैतन फिल जाना। रिवायत से पता चलता है कि लोग अपने आमाल की निस्बत से अल्लाह का दीदार किया करेंगे, कुछ बस वंस अ वाइल एक ही बार करेंगे पूरे अपने जन्नती टाइम में, कुछ वंस अ ईयर अपने लिए सोच लें, अब हमें नहीं पता वहां के दिन रात कैसे हैं, कोई महीने में एक बार, कोई हफ्ते में एक बार। रिवायत में आता है कि जन्नत में एक जुमा बाजार लगेगा फ्राइडे को, जन्नत का जुमा बाजार है ना, उसका नाम आप सुन चुके हैं दौरे कुरान में पिछली दफा, यौमुल मजीद, जन्नत में जो जुमे का दिन होगा ना उसको यौमुल मजीद कहेंगे, और सब जन्नती मर जाएंगे, और फिर वहाँ एक दरबार सजेगा, फिर वहाँ अल्लाह ताला नजूल फरमाएंगे, फिर उनसे मुलाकातें होंगी, फिर जब जन्नती घर आएंगे तो उनके घर वाले कहेंगे कि जब तुम गए थे तो इतने हसीन नहीं थे, जब वापस आया तो और हसीन हो गया, वो जो है यौम ज़िन नादिरा, इला रब्बी का नासिरा, अल्लाह के दीदार से चेहरों में चमक आ जाएगी, खूबसूरती होगी। फिर एक और हदीस बहुत ही क्लियरली हमें बताती है कि हम अल्लाह को देखेंगे कैसे। बुखारी मुस्लिम में अबू सईद खुदरी और अबू हुरैरा से रिवायत है, लोगों ने पूछा अल्लाह के रसूल क्या हम क़यामत के रोज़ अपने रब को देखेंगे? आपने फरमाया क्या तुम्हें सूरज और चांद को देखने में कोई दिक्कत होती है, एनी हर्डल एनी रुकावट, जबकि बीच में बादल भी ना हो? लोगों ने अर्ज़ किया नहीं। आपने फरमाया इसी तरह तुम अपने रब को देखोगे, यानी खुला चा बादल हो तो फिर सूरज नहीं दिखता ना, और बादल हो तो चांद भी छुप जाता है रात को। कहा बिल्कुल खुल्लम खुल्ला देखोगे। एक और रिवायत बुखारी और मुस्लिम में जरीर बिन अब्दुल्ला से है और मुस्नद अहमद तिरमजी बहुत सारे इसके हवाले हैं। लफ्ज़ों का थोड़ा सा फ़र्क है, खुलासा क्या है इसको सुनिएगा, बहुत ही खूबसूरत रिवायत है। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि अल्लाह के नबी ने फरमाया अहले जन्नत में कम से कम दर्जे का जो आदमी होगा। आप सोचें, हम कहते हैं ना कि अल्लाह मुझे सबसे कम ही कर दे, लेकिन एक बार जन्नत में ले जाओ, सबसे कम का क्या इकराम है। वो अपनी सल्तनत की वसत 2000 साल की मुसाफत तक देखेगा, यानी जन्नत में सबसे गरीब शख्स का घर और उसका रहना, सल्तनत से समझे ना जहाँ उसकी अथॉरिटी है। पीछे आपने पढ़ा है हलकानी सुल्तानिया, सूरत मारिज थी या सूरत हाका थी, हाका थी शायद। तो वहाँ उसकी सल्तनत 2000 साल की मुसाफत तक दिखेगी, और इनमें सबसे ज्यादा फजीलत रखने वाले कौन होंगे? अब आप सोचिए, सबसे गरीब बंदा इतना अमीर है, तो जन्नत में जो सबसे ज्यादा फजीलत वाला है उसका क्या हाल होगा? आप गेस करें क्या होगी इसके आगे बात। वो लोग हर रोज 2 मर्तबा अपने रब को देखेंगे। वजूह यौम इसे नातिरा इला रब्बिहा नासिरा। फिर इसके बाद अल्लाह के नबी ने यही आयत पढ़ी कि उस रोज कुछ चेहरे तरोताजा होंगे और अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। 2 दफा तो कम से कम फिर अल्लाह की किताब पढ़नी चाहिए ना दिन में, 2 दफा तो अल्लाह से मुलाकात का शौक आए ना। कम से कम 5 में से 2 नमाजें तो ऐसी हो ना कि कान ना का तरह हो कि हमने उसको देखा है। ये मैं और आप डिसाइड कर रहे हैं यहाँ। देखिए क्या बड़े लोग हर एक को मिलते हैं और हर वक्त मिलते हैं? मैं और आप चाहे दुनिया के किसी बड़े को जाके फोन कर ले, मिल ले, कोई देता है इजाजत? हर बंदा अपने लेवल पर ही मिलता है। तो दुनिया की सबसे बड़ी हस्ती, और आप सोचिए वो क्या फीलिंग होगी जब हम अल्लाह को मिलेंगे, सारे दुख सुनाए, दुख तो याद ही कोई नहीं रहने। हदीस में आता है कि भाई जन्नती जो बड़ा दुनिया में मसाइब में था, दुखों में था, और हर बात पे ये कहता था मैं सब्र करता हूँ, मुझे अल्लाह आखिरत में इसका बदला देंगे। क़यामत के दिन जब उसका हिसाब शुरू होगा तो अल्लाह ताला कहेंगे कि ठहरो फरिश्तों, जो पहले इसको दूर से जन्नत दिखा के लाओ, फिर मैं इसके दुख सुनूंगा, फिर इसको जजा दूंगा। तो फिर उस वक्त जब अल्लाह ताला के हुक्म से वो एक जन्नत का दूर का टूर करके आएगा, अभी दाखिल नहीं हुए, अभी बस दूर से देखा है, फिर उसको वापस ले आएंगे और कहेंगे भाई सुनाओ क्या था मसले, क्या गम थे, क्या तुमने सब्र किया? कि अल्लाह तेरे जलाल की कसम मैंने आज तक दुनिया में गम तकलीफ बीमारी दुख का नाम नहीं सुना। आपने फरमाया जन्नत की दूर की झलक दुनिया के सब गम तो भुला देगी। ये गमों की हैसियत है हमारी, ये दुनिया फानी है ना, हमारी बीमारियां भी फानी है, गम भी फानी है। शर्त एक है कि मेहनत करके अल्लाह की रजा से जन्नत की तरफ पहुंच जाए। इब्ने माजा में जाबिर बिन अब्दुल्ला से रिवायत है अल्लाह इनकी तरफ देखेगा और वो अल्लाह की तरफ देखेंगे। देखिए मोहब्बत होती है ना, फिर दोनों एक दूसरे को देखते हैं, कई ताल्लुक है ना हमारे इंसानों से। मोहब्बत है ना, दोस्त को दोस्त से तो आंखों में आंखें डाल के बातें करते रहते हैं, किसी को बुरा नहीं लगता, लेकिन सम हाउ कोई एक देखता है तो दूसरा नहीं देखता। कब? नंबर एक रिस्पेक्ट की वजह से, रिस्पेक्ट की वजह से। जैसे सहाबा के बारे में आता है कभी अल्लाह के नबी सल्लम के सामने नहीं बैठते थे और आपकी तरफ देखते नहीं थे। इवन उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हो जैसा शख्स भी जब नबी सल्लम से बात करते थे तो जरा सा हट के और नजरें झुका के बात करते थे। तो पहली वजह कि दोनों कब नहीं आपस में एक नजर मिलाते कि जब रिस्पेक्ट होती है। फिर दूसरी एक वजह होती है गुस्सा, दिल में कोई किसी के लिए गुस्सा। जैसे आपको अपने बच्चे पे गुस्सा होता है, आप कहते पीछे हो जाओ मेरे से बात नहीं करो, शक्ल नहीं देखनी मैंने तुम्हारी। फिर तीसरी एक वजह होती है अताब, ऐसे उनको डांटने के अंदाज से या तरबियत के नाते से। अल्लाह बंदे को देखे और बंदा रब को देखे, ये क्या मंजर है, ये बीच में कोई नेगेटिव फीलिंग नहीं है। इसलिए कहा कि नमाज में ऊपर नहीं देखो। आपको पता है कि नमाज में अगर जानबूझ के कोई ऊपर देखता है ना तो नमाज बातिल हो जाती है। क्यों? कि इस दुनिया में अल्लाह से रिस्पेक्ट का ताल्लुक है, वो मालिकुल मुल्क है। आज मैं कौन हूँ? बंदी। और वो या का ना बुदो या का नस्ते, जन्नत में ऐसे नहीं होगा, जन्नत में अल्लाह तला से दोस्ती होगी। अब क्या ताल्लुक होगा? अल्लाह नोज दी बेस्ट। खैर, आगे कहते हैं कि अल्लाह इनकी तरफ और वो अल्लाह की तरफ देखेंगे, फिर जब तक अल्लाह ताला इनसे पर्दा ना फरमा लेगा, इस वक्त तक वो जन्नत की किसी नेमत की तरफ तवज्जो भी ना करेंगे और इसी की तरफ देखते ही रहेंगे। जैसे महबूब सामने हो तो कौन खाए और कौन पिए, कौन पहने, वो कहते बस आप सामने बैठे, हम आपको देखना चाहते हैं। तो दुनिया में छोटी छोटी मोहब्बतें अल्लाह ने डाली हैं इस बड़ी मोहब्बत के तारुफ की तरह, तो हमें इसकी दुआ करनी है। क्या शौरी तौर पे कभी इसकी दुआ की है हमने? करने की जरूरत है। और कुछ ऐसे बदबخت भी हैं कि अल्लाह कल्ला इन्नहुम रब्बिहिम यौम इज़िल महजूबून, पढ़ेंगे सूरह मुतफ़िफ़ीन की आयत नंबर 15 में, कि कुछ को तो अल्लाह आड़ दे देगा कि खबरदार तुम मेरे पास नहीं आ सकते। अब इसमें कोई कि अच्छा एक इंसान खाकी अल्लाह को कैसे देखे? अल्लाह तो नूर है, अल्लाह नूरुस समावात है, तो देखने से तो लगता है कि चीज सामने हो, मौजूद हो, और रोशनी को कोई कैसे देखे? तो इसके लिए एक छोटी सी बात समझ लीजिए कि इस दुनिया में हमारी आंखों की जो केमिस्ट्री है ना, वो जन्नत की आंखों से फर्क होगी। अल्लाह ताला जन्नत में ले जाने से पहले जन्नतियों को नहरे हयावान में दाखिल करेंगे, डुबकी दिलाएंगे कह ले, तो हमारी सारी इनर सिचुएशन है ना, वो चेंज हो जाएगी। ताकत बढ़ जाएगी, आंखें बढ़ जाएंगी, विजन, स्मार्ट, खाना पीना, सेक्सुअल ताकत, और जो कुछ भी इंजॉयमेंट की कैफियत है वो सब बढ़ जाएंगी। तो अल्लाह ताला चाहेगा तो हमारी सलाहियत को बढ़ा देगा। और सच्ची बात है, हमें इसकी क्या फिक्र है? जब वो खुद कह रहा है कि तुम मुझे देखोगे तो अब हम इस पे बात करें, क्योंकि बाज लोग इन्हीं बातों पे बहस करके गुमराह हो गए। बताओ जी कैसे देखेंगे, और अच्छा जी ये कैसे होगा? अब आज तो दुनिया में आप देखिए, आंख है उसके अंदर कॉर्निया है, रेटिना है, और उसमें खास एंगल से लाइट जाती है, फिर डिस्पर्स होती है। क्या वहां जाके ये कुछ होना है? हमने इस मिट्टी के वजूद पे तो होना भी नहीं है। तो अल्लाह हमें एक नया जिंदगी देगा, लिहाजा इसकी फिक्र ना करें। इसी तरह आप देखिए कि आखिरत के और बहुत से मामले हैं। मसलन दुनिया में देखिए, शौहर बीवी हैं, साथ रहते हैं, फिर अल्लाह औलाद देता है। अब दुनिया में इस ताल्लुक और उसका नतीजा हम सब जानते हैं, तो जन्नत में कैसा होगा? नहीं होगा। लेकिन ये मामला होगा, इसकी लज्जत क्या होगी, इसका क्या हालात होंगे, बिल्कुल यहां से फर्क है। तो ये दुआ कीजिए कि अल्लाह ताला मुझे और आपको इस पे अमल करने वाला बना दे। फिर उसके बाद यहाँ एक लफ्ज आया रौक, आयत नंबर 27 के एंड पे, वकील मन रौक। तो रौक का लफ्ज वही है जिसको उर्दू में हम रुकिया के नाम से जानते हैं, रुकिया करने वाला रौक। ये नहीं कि तावीज गंडे और झाड़ फूंक के, बल्कि क्या है कि कोई है जो तुम्हारी जान वापस ले आए, कोई तुम्हें दम कर दे कि जिससे तुम्हारी रूह जाती हुई वापस आ जाए। और दूसरा इसका मानी क्या है, रकी तरक्का, तरक्की उर्दू में बोलते हैं ना। कुरान पाक की मोहब्बत में एक हदीस भी है ना कि कहा जाए कि इकरा वरका, तो बात कहते हैं ये रक्का से है, मानी क्या चढ़ने का। पहला मानी है तो क्या मतलब है कि आखिर वक्त में जब मरीज के तीमारदार हर दवा से मायूस हो जाते हैं तो कहा जाए कि लाओ कोई झाड़ फूंक वाले ही ले आओ, चलो कोई दामी कर दे इसको। और दूसरे मानी लिए जाए तो मतलब क्या है, उस वक्त फरिश्ते कहेंगे इस रुख को किसे लेकर जाना है, फरिश्ते अजाब के या रहमत के। मरते ही पता चल जाता है कि मरने वाला कहाँ जा रहा है। नेक होगा तो रहमत के फरिश्ते ले जाएंगे, बद होगा तो अजाब के फरिश्ते ले जाएंगे। फिर उसके बाद ये जो लफ्ज है ना साक, इसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं, पिंडली लोग भी मानी है, डिक्शनरी मीनिंग है इसका। तो मानी क्या होगा कि मरने के वक्त टांगे सूख कर एक दूसरे से जुड़ जाएंगी। लेकिन इसका एक दूसरा मानी अरबी मुहावरे के मुताबिक शिद्दत और सख्ती और मुसीबत है, यानी उस वक्त दो मुसीबतें एक साथ जमा हो जाएंगी, एक इस दुनिया और इसकी हर चीज से जुदा होने की मुसीबत, और दूसरी आखिरत में एक मुजरिम की हैसियत से गिरफ्तार होकर जाने की मुसीबत। हर काफिर मुनाफिक फाजिर शख्स को इससे वास्ता पेश आएगा। फिर आप देखिए आखिरी आयतें तो बहुत ही दिल को हिलाने वाली हैं। कैसा इंजाम क्यों हुआ, फला सद्दक वला सल्ला, ना तस्दीक की ना नमाज पढ़ी, वलाकिन कज़्ज़ब व तवल्ला, झुटलाया और मुंह फेर लिया। ये कौन सा शख्स है इसके बारे में तफसीर से पता चलता है कि ये शख्स अबू जहल था, कोई एक था जिसका नाम लिए बगैर अल्लाह ने कह दिया। यहाँ एक बात देखिएगा, इसने सच न माना, फला सद्दा का, और नमाज न पढ़ी। ये बड़ी अहम बात है। क्या पता चला कि अल्लाह और उसके रसूल की सदाकत को तस्लीम करने के बाद सबसे पहली चीज नमाज है। शरीयत के बाकी अहकाम पे तो अमल बाद में होगा ना, लेकिन ईमान के इकरार के बाद पहली चीज अगली ही नमाज का वक्त, और उस वक्त आपका सल्ला फिर फायदा होगा। फिर आगे देखिए, अउला लकफा उला, ये भी लफ्ज यहाँ दो दफा आया था, इसको भी देखने की जरूरत है। आयत 34 और 35 में अउला, तुझे ये जेब है, ये बात तुझे ही सजती है, यानी तो इसी के काबिल है। तो अउला का लफ्ज क्या है? सबसे ज्यादा हकदार, तुफ है तुझ पर। और तो मैं हम कहते हैं ना, हलाकत है तेरी, कमबख्त, तबाही, खराबी, बदबख्ती है तेरे लिए, ये मानी है कि तू अपने रब का कुफर करता था, तो तेरे जैसे इंसान का तो फिर यही ही अंजाम होना चाहिए। पीछे भी हम पढ़ चुके हैं सूरह दुखान आयत 49 में, मुजरिम को क्या कहा जाएगा? जुक चक, इन्ना कंतल अजीजुल करीम, तू बड़ा इज्जतदार आदमी था, बड़ा जबरदस्त था, आज चक इस अजाब को। तो लिहाजा बात को खत्म करते हुए फिर दोहराया जा रहा है कि मरने के बाद जीना और जीने के बाद मरना। तो फिर इस सूरत के बाद वाकई हम सबको अपनी मौत याद रहनी चाहिए। बस रिवायात में आता है कि नबी सल्लम जब ये आखिरी आयतें पढ़ते थे कि जिसमें कहा गया कि कौन है जो अलैसा ज़ालिका बिक़ादिर अला अन युहयिया अल-मौता, कि क्या वो इस पर कादिर नहीं कि मरने वालों को फिर से जिंदा कर दे, सवाल है ना, क्वेश्चनिंग है। तो अल्लाह के नबी इसके जवाब में कहते थे बला, क्यों नहीं? कभी कहते सुबहानक अल्लाहुम्मा फबला, पाक है तेरी जात ए अल्लाह, और यानी कोई भी ऐसा नहीं है। इसी तरह सुबहानक फबला या सुबहानक वबला, दोनों अल्फाज आते थे। एक रिवायत है अबू दाऊद में हजरत अबू हुरैरा से, अल्लाह के नबी ने फरमाया जब तुम सूरत 3 में अलैसल्लाहु बिअहकमिल हाकिमीन पढ़ो, आखिरी आयत है, तो कहो बला व अना अला ज़ालिका मिनश शाहिदीन, कहो क्यों नहीं मैं इस पर गवाही देने वालों में से हूँ। और जब सूरत क़यामा की आयत पढ़ो तो कहो बला क्यों नहीं। और आगे सूरह मुर्सलात में हम पढ़ेंगे अब यही हदीस इबादहु यूमिनून, जब इसको पढ़ो तो कहो आमन्ना बिल्लाही, हम अल्लाह पर ईमान लाए हैं। तो ये थी सूरत क़यामा, एक छोटी सी क़यामत की झलकी थी। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें इसकी तौफीक अता फरमाए। सुभान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून, वसलामुन अलल मुरसलीन, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।